क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले अरिहंत अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। णमोकार मंत्र की यह अमृत धारा प्रवहमान है, तो एक महत्व की बात यहां पर आज आपके सामने कही जा रही है। क्रियाकलाप ग्रंथ में नमो अरहंताण में इस पद को लेकर एक श्लोक आता है, अरिहननाद रजोहननाद रहस्याभावाच्च परिप्राप्तानंत चतुष्टयस्वरूपाः शतेन्द्रादि विनिर्मितामतिशयवतीं पूजाम अर्हन्तीत्यर्हन्तः। क्या सुंदर पंक्ति है। अरि का हनन करने के कारण, दोनों प्रकार की रज का हनन करने के कारण और रहस्य का अभाव होने के कारण, अरि से मोह, रज से ज्ञानावरण और दर्शनावरण और रहस्य से अंतराय कर्म, जिनको अनंत चतुष्टय स्वरूप की परिप्राप्ति हो चुकी है, अर्थात जो अनंत चतुष्टय को भली भांति प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा जिनका स्वरूप है और शतेन्द्र आदि, सौ इंद्र आदि द्वारा विनिर्मिताम रची गई अतिशयवतीम पूजाम, सब पूजाओं से बढ़ चढ़कर जो पूजा है उसको अर्हन्तीत्यर्हन्तः, ऐसी पूजा के जो पात्र होते हैं वे अर्हन्त कहलाते हैं। अर्ह धातु से अर्हन्त शब्द की व्युत्पत्ति बताई है और फिर एक सुंदर छंद दिया है। धवल ग्रंथ का भी एक पृष्ठ हमने खोला तो वो काव्य ये है, घाति क्षय जमनंत ज्ञानादि चतुष्टयम् विभूताढ्यम्। घाति क्षय जमनंत ज्ञानादि चतुष्टयम् विभूत्याढ्यम्। ईशामस्त्यर्हन्तस् तेत्र जिनेन्द्राः समुद्दिष्टाः। घाति कर्मों के क्षय से उत्पन्न अनंत ज्ञानादिक चतुष्टय येषाम अस्ति, जिनके पास हैं, और वह अनंत ज्ञानादिक चतुष्टय विभूत्याढ्यम विभूति से भी युक्त है, विभूति से संपन्न है। ये जो शब्द है, ये जो विशेषण है, ये जो अनंत चतुष्टय जिसको कहा गया है, वह विभूति रहित नहीं होता बल्कि विभूत्या आढ्यम, विभूति से आढ्य अर्थात संपन्न होता है। धनाढ्य शब्द होता है ना, धनाढ्य का अर्थ है धन संपन्न। तो ये भगवान जो होते हैं विभूति से संपन्न अनंत चतुष्टय के धनी होते हैं, स्वामी होते हैं। तो येषाम अस्ति, जिनके पास विभूति से संपन्न अनंत चतुष्टय है, और अनंत चतुष्टय कैसा है तो घाति कर्मों के क्षय से उत्पन्न है, हुआ है, वह जिनके पास है वे अर्हंत हैं, और तेत्र वे इस लोक में जिनेन्द्राः समुद्दिष्टाः, जिनेन्द्र कहे जाते हैं। अर्हंत ही इस जगत में जिनेन्द्र कहे जाते हैं। तो ये एक जानकारी का विषय था कि साधु विभूतियों का त्याग करके साधुत्व को प्राप्त होते हैं, और अरहंत विभूति से संपन्न अनंत चतुष्टय के धारक होकर अरहंत होते हैं। तो दोनों में ये अंतर हुआ, साधु विभूति से रहित होते हैं, अरहंत विभूति से संपन्न होते हैं। अब विभूति क्या चीज है? भूतिर भस्मनि संपदि वी विशेषेण भूति इति विभूति। भूति का अर्थ होता है राख अथवा संपदा, और विशेष रूप से जो भूति अर्थात संपदा है उसको विभूति कहते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान विशेष वैभव से संपन्न अनंत चतुष्टय के स्वामी हैं। ये बात अपने को हमेशा ध्यान में रखनी है कि अरहंत कभी भी वैभव रहित नहीं होते। ऐसा सुनते हैं कि सन 74 में आचार्य विद्यासागर महाराज जब राजस्थान से मध्य भारत में आए, तब यहां के कुछ जिनालयों में अरहंत भगवान की वैभव रहित प्रतिमाओं को देखकर उनके मुख से एक शब्द निकला कि ऐसा स्वरूप तो सिद्ध प्रतिमा का होता है, लेकिन अरहंत प्रतिमा तो वैभव संपन्न होती है। ये इसका अभिप्राय था। अब अपन देखते हैं कि इस काव्य के पूर्व जो पंक्ति आई थी उसमें प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा था कि शतेन्द्र विनिर्मिताम अतिशयवतीम पूजाम अरहंती इति अरहंत। 100 इंद्रों के द्वारा, और आदि शब्द और दिया है। तो आदि शब्द का अर्थ ऐसा है कि कोई और मंडलेश्वर महामंडलेश्वर राजा आ जाए, बलभद्र नारायण जैसे महापुरुष आ जाए, और ऐसे अन्य भी कई बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं जो भगवान के पास आ जाते हैं और आकर के वो अपने ढंग से अतिशय संपन्न भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। अब इसी पंक्ति के आधार पर हमने एक पंक्ति लिखी थी, अर्हणाम अर्हतीत्यर्हन विश्व विश्वातिशायिनीम। विश्व यानी सबके लिए, विश्वातिशायिनीम संपूर्ण विश्व में होने वाली अर्हणाम पूजा से बढ़कर के जो पूजा के पात्र होते हैं वो अरहंत कहलाते हैं। यानी जितने भी पूज्य जीव हैं इस जगत में, उन सब की जो पूजा की जाती है, उन पूजाओं से बढ़कर जिनकी पूजा होती है वो अरहंत होते हैं। अब धवल ग्रंथ में अपन एक बात देखते हैं जो दो तीन दिन पूर्व एक प्रश्न आया था कि मंदिरों में जो भगवान के शासन देव और देवियां होती हैं उनकी भी स्थापनाएं यत्र तत्र दृष्टिगोचर होती है, कई मंदिरों में देखने को मिलती है, तो उनके प्रति एक जिन भक्त का, एक सम्यक दृष्टि जीव का क्या बर्ताव और क्या व्यवहार आगम की अपेक्षा अपेक्षित है, ये बात अपने को समझनी थी। तो हमने कहा था कि पांच प्रकार से उनकी आराधनाएं शास्त्रों में बताई गई है, उनमें कुछ आराधनाओं को उचित और कुछ को अनुचित भी कहा गया है। तो अपन उचित और अनुचित दोनों को समझ सकते हैं शास्त्र की कृपा से। पहले अपन ये देखते हैं धवल ग्रंथ में अतिशय पूजारहत्वाद वारहंतः, ये पंक्ति अपन ने पहले भी पढ़ी थी लेकिन आज एक विशेष समाधान प्राप्त करने के लिए इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। अतिशय पूजा यानी बढ़ चढ़ करके जो पूजा है उसके योग्य होने के कारण जिनेंद्र भगवान अरहंत हैं, उस पूजा की पात्रता सबके पास नहीं होती, उसकी पात्रता उन्हीं के पास है, इसलिए वो अरहंत है। स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिष्क्रमण केवल ज्ञानोत्पत्ति परिनिर्वाणेषु। स्वर्गावतरण के समय अर्थात जब तीर्थंकर मां के गर्भ में अवतरित होते हैं, जन्माभिषेक जब इंद्रादि देव सब परिवार उनकी जन्म नगरी में आकर और उनको आने के संकेत भी प्राप्त होते हैं, वो भिन्न भिन्न संकेत हैं, वो भी हम आपको एक श्लोक में पढ़ के सुनाते हैं। किनको किस संकेत से पता चलता है कि भगवान जन्मे हैं? कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखा ज्योतिष्कलोकेषु च सिंहनादः भीरीस्वनो व्यंतरदेव वृंदे नदन्ति नूनं जिन जन्म काले। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है दक्षिण भारत का। जिन जन्म काले, जिनेंद्र भगवान के जन्म काल में चार प्रकार के देवों को चार प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, वो तत्काल समझ जाते हैं कि ये संकेत भगवान के जन्म सूचक संकेत है। कल्पेशु घंटा, कल्प का अर्थ है ऊर्ध्वलोक में स्थित देवों के जितने विमान हैं, उन सभी विमानों में 16 कल्प हैं, जिनको अपन बोलचाल की भाषा में 16 स्वर्ग कहते हैं, उन 16 स्वर्गों में घंटा नदंती, घंटे बजने लग जाते हैं। जैसे यहां भूलोक पर मां तीर्थंकर को जन्म देती है, तब वहां घंटे बजने लग जाते हैं। भवनेशु शंखा, और अधोलोक में जो भवनवासियों के भवन बने हुए हैं, अकृत्रिम भवन है, अनादिकालीन है, वहां पर शंखनाद होने लग जाता है। ज्योतिष्क लोकेशु च सिंहनाद, और ज्योतिर्लोक में ग्रह तारा नक्षत्र सूर्य चंद्र, उनमें सिंहनाद होता है, सिंह गर्जना जैसी ध्वनियां वहां पर होने लग जाती हैं। और भीरी स्वनो व्यंतर देव वृंदे, व्यंतर देवों के वृंद अर्थात समूह में नगाड़ों की आवाज होने लग जाती है, भेरियां बजने लग जाती है, नगाड़े बजने लग जाते हैं। नूनम, ये नियम है अनादि से अनंत काल तक, ये शाश्वत नियम है। जिन जन्म काले नदंती, जिनेंद्र भगवान के जन्म काल में ये चार ध्वनियां इन चारों निकाय वाले देवों को संकेत देने के लिए होती ही हैं, ये सब बजते ही हैं। और फिर क्या होता है, तो आचार्य लिख रहे हैं, परिनिष्क्रमण, जब भगवान परितः निष्क्रमण करोति, निष्क्रमण का अर्थ होता निकल जाना, परितः पूरी तरह से वो घर बार छोड़ करके निकल पड़ते हैं दीक्षा कल्याणक के समय, सब त्याग करके चले जाते हैं वो। तो उस काल में भी, और केवल ज्ञानोत्पत्ति, केवल ज्ञान की उत्पत्ति के काल में भी, और परिनिर्वाणेषु, और परिनिर्वाण के होने पर भी, ये पांच अवसर बताए हैं। इन पांच अवसरों पर देवकृतानाम पूजानाम, देवों द्वारा की गई पूजाओं के अतिशयानाम, कैसी है वो पूजाएं, वो पूजाएं अतिशयवती हैं, अर्थात बाकी जो पूजाएं होती है दुनिया में, इस जगत में और भी पूज्य जनों की पूजाएं होती है, उनसे बढ़ करके हैं। अतिशय शब्द का अर्थ होता है बढ़कर। सूर्यातिशायी महिमा सी मुनीन्द्र लोके, सूर्य से भी बढ़कर है महिमा जिनकी इस जगत में, आप हे आदिश्वर प्रभु सूर्य से बढ़कर महिमा बंत हैं। तो जगत में होने वाली जितनी पूजाएं हैं उनसे अभ्यधिकत्वात्, अधिकत्वात् अतिशयानम, अर्हत्वात्, उनसे भी अधिक योग्य होने के कारण, उनसे भी बढ़ चढ़ के होने वाली पूजा के योग्य होने के कारण अर्हन्तः अर्हन्त हैं, तब वो पूजाएं किनकी होती है? तो उसके लिए आचार्य वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं, देवासुर मानव प्राप्त पूजाभ्यः अधिकत्वात् अतिशयानाम पूजानाम अर्हत्वात् योग्यत्वात् अर्हन्तः। देवों की पूजाएं होती है, असुरों की पूजाएं भी होती हैं। अब वो जो उनका भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, उस अपेक्षा से देवों की पूजाएं भी होती है, असुरों की पूजाएं भी होती है। अब असुर शब्द को उपलक्षण मान करके उसमें अन्य भी ग्राह्य हैं, जो जो पूजा के योग्य हैं उनको भी ग्रहण कर लेना है। देव में अपन ऊर्ध्वलोक वाले देव ले लेंगे, और असुर शब्द में अपन मध्यलोकवर्ती जितने भी देव हैं उनको ग्रहण कर लेंगे, और मानवों में जितने भी मनुष्य पूजा के योग्य हैं उनको ग्रहण कर लेंगे। अब मानवों में केवल मुनिराज पूजा के योग्य हैं ऐसी धारणा नहीं बनाना है। माता पिता भी पूज्य होते हैं, शिक्षक भी पूज्य होते हैं, राजा भी पूज्य होते हैं। राजेंद्र चक्रमवनींद्र शिरोर्चनीयम्। जिन भक्ति भव्य उपैति, जिनेंद्र भगवान में भक्ति रखने वाला सम्यक दृष्टि जीव, भव्य जीव, साक्षात आचार्य की पंक्ति सुनाने में हमें थोड़ा अधिक प्रामाणिकता लगती है, तो वो हम आपके सामने सुनाते हैं। राजेंद्र चक्रम लब्ध्वा राज्याम इंद्राश चक्रवर्तिनस तेषां चक्रम चक्ररत्नम। चक्ररत्न को प्राप्त होकर किम विशिष्टम अवनींद्र शिरोर्चनीयम अवन्याम निज निज पृथिव्याम इंद्रा मुकुटबद्धा राजानस। अवनींद्र का अर्थ होता है अपनी अपनी धरती के जो इंद्र है, मुकुटबद्ध राजा हैं, तेषाम शिरो भी अर्चनीयम, उनके मस्तकों के द्वारा अर्चनीय चक्रवर्ती के चक्र को सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त होते हैं। तो चक्रवर्ती का चक्र रत्न भी अर्चनीय होता है। अब चूंकि चक्रवर्ती से संबंधित है, इसलिए मानवों की श्रेणी में वहां पर उस वैभव को भी स्वीकार करना होता है। यद्यपि वह 1000 यक्ष देवों द्वारा रक्षित है, लेकिन 32000 मुकुटबद्ध राजाओं द्वारा अर्चनीय है। कौन? चक्रवर्ती का चक्र रत्न। अर्चनीय का अर्थ क्या है? पूजनीय। तो ये अपने को थोड़ा समझना है। कुछ धारणाएं अपनी ऐसी बन गई है कि इस जगत में केवल सच्चे देव शास्त्र गुरु ही पूज्य होते हैं, अन्य किसी को भी पूज्य मानना घोर मिथ्यात्व है, संसार में भ्रमण का कारण है। ये सारी बातें जो है अपन थोड़ा शास्त्रों से समझ लें तो अधिक उत्तम होगा, अपने लिए कल्याणकारी होगा। 32,000 मुकुटबद्ध राजा क्या सारे के सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं, जो चक्रवर्ती के चक्र रत्न की पूजा करते हैं? और क्या स्वयं चक्रवर्ती भरत, सगर, मगवा, सनत कुमार, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये स्वयं चक्रवर्ती थे? चक्र रत्न की पूजा करने के लिए चक्रवर्ती जाते हैं तो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती की विभूति में आने वाला जो चक्र रत्न है वो जब भी प्रकट होता है आयुधशाला में तब उनकी अर्चना के लिए जाते हैं। आप देखिए भरत चक्रवर्ती के कथानक में आपने सबने सुना है कि एक ऐसा संयोग बना था उस दिन कि भरत के सामने 3 दूत एक साथ उपस्थित हुए और चक्री ने पूछा कि तुम किसके समाचार लाए, तुम किसके लाए, तुम किसके लाए। तो एक कहता है कि मैं आपके पिताश्री के समाचार लाया हूं, दूसरा कहता है कि मैं आपकी आयुधशाला का समाचार लाया हूं, एक कहता है कि मैं आपके अंतःपुर का समाचार लाया हूं। तो चक्रवर्ती कहते हैं कि सबसे पहले तुम मुझे समाचार सुनाओ, तुम मेरे पिताश्री के तुम क्या समाचार लेकर आए हो? तो वो कहता है कि आपके पिताश्री ने 1000 वर्ष पूर्व जो तपश्चरण का मार्ग स्वीकार कर लिया था, दीक्षा ग्रहण कर ली थी, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। चक्रवर्ती अपने सिंहासन से उठकर उस दिशा में जहां पिताश्री को केवल ज्ञान हुआ था 7 कदम चलते हैं और विधिवत नमस्कार करते हैं। फिर आयुधशाला वाले समाचार वाहक से पूछते हैं कि तुम क्या समाचार लेकर आए हो? वो कहता है कि आपके चक्रवर्तित्व को प्रकट करने वाला चक्र रत्न आयुधशाला में, शस्त्रागार में प्रकट हुआ है। चक्रवर्ती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर अंतिम दूत से पूछते हैं कि तुम अंतःपुर के क्या समाचार लाए हो? वो कहता है कि आपके यहां पुत्र रत्न का प्रादुर्भाव हुआ है, आपकी रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। इस तरह 3 समाचार मिलने पर चक्रवर्ती जब आयुधशाला में चक्र रत्न के पास जाता है तो चक्र की पूजा करता है। महापुराण में भी इसका उल्लेख है और अन्य भी आचार्यों द्वारा प्रणीत ग्रंथों में यह कथन उपलब्ध होता है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी अणुव्रति, भरत चक्रवर्ती अविरत नहीं थे, चौथे गुणस्थान वर्ती नहीं थे, वो पंचम गुणस्थान वर्ती अणुव्रति थे, वो चक्र रत्न की पूजा करते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु ही पूज्य होते हैं, अन्य किसी की भी पूजा करने वाला मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहने वाले एक बार ये बता दे कि आपकी घोषणा के अनुसार तो भरत चक्रवर्ती भी शास्त्रों के अनुसार क्षायिक सम्यक दृष्टि भले हो पर आपके मतानुसार वह मिथ्या दृष्टि है, तो आपका मत क्षायिक सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि मानने वाला मत हुआ कि नहीं? इसलिए इस पर पुनर्विचार अपेक्षित है। शरणम द्विविधम लौकिकम लोकोत्तरम चेति। तो इसमें अपने को दो विभाग करने होंगे, एक लौकिक, एक लोकोत्तर अर्थात अलौकिक। तो अलौकिक मंगल, अलौकिक उत्तम और अलौकिक शरण मान करके जिनकी पूजा की जाती है वो पंच गुरवः, पंच परमेष्ठी हैं। पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि लौकिक पूजा करना मिथ्यात्व है। लोक में जो लोकानुवृत्ति विनय बताई है मूलाचार ग्रंथ में, उसको आचार्य वटकेर स्वामी ने अथवा अन्य किसी भी आचार्य ने मिथ्यात्व नहीं कहा है। तो लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत अनेक प्रकार की विनय बताई गई है, और उसमें एक विनय तो ऐसी बताई है जो अपने को अचंभित करती है कि अपने गुरु जब अपने चौके में आहार करने के लिए आते हैं तब जो उनकी पूजा आप करते हैं वह पूजा भी लोकानुवृत्ति विनय है। उसका कारण यह है कि उसमें कुछ लेन देन का व्यवहार चल रहा है। आप पूजा कर रहे हो तो वो आहार ले रहे हैं, आप पूजा ना करो तो वो आहार नहीं लेंगे। ऐसा आगम का आदेश है कि भिक्षुक नमोपचार विधि के बिना आहार नहीं लेते। और उसको अपन बोलचाल में आहार अवश्य कहते हैं, वस्तुतः शास्त्रीय भाषा में उसका नाम भिक्षा है। साधु भिक्षा लेते हैं, आहार नहीं लेते, भले ही वो भिक्षा आहार रूप हो। पर अगर अपन एकदम स्ट्रिक्टली कठोरतया शास्त्रों के शब्दों का ही प्रयोग करें तो साधु भिक्षा ग्रहण करते हैं। मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि दातारों द्वारा निर्मित भोजन जो साधु भिक्षावृत्ति से ग्रहण करते हैं उस भोजन को भिक्षा कहा जाता है, उसको आहार नहीं कहा जाता। देखो वो पंक्तियां भी मूलाचार की कभी हम यहां पर आपके समक्ष रख सकते हैं यदि आपकी उत्कंठा हो तो, पर अभी इतना समझ लीजिए कि मूलाचार में ऐसा उल्लेख आया है। जितने भी मूलाचार के पाठी हैं वो सब जानते होंगे इस बात को, यदि उनकी स्मृति में अगर विषय होगा तो वो अवश्य इसका ज्ञान रखते होंगे। तो हमारे कहने का अभिप्राय ये था कि ये जो लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत की जाने वाली पूजाएं हैं उन पूजाओं में पंच परमेष्ठियों के अंतर्गत जो आचार्य उपाध्याय साधु है जब चौके में आते हैं तो वहां पर वो पूजा हो रही है लेकिन एक लेन देन का व्यवहार चल रहा है, और आप उनकी वसतिका में जाकर के जहां पर साधु विराजमान है, संघ विराजमान है, वहां जाकर के उनकी पूजा करते हो तो वो मोक्ष विनय के अंतर्गत आती है। कितनी आश्चर्यजनक बात है, भले ही आप चौके में पूजा करते समय एक एक द्रव्य चढ़ाते समय भावना वही करो जो आप वहां कर रहे हो उनकी वसतिका में जाकर के। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम अक्षय पद प्राप्त ये अक्षतान, बीच में गंध भी है, जल गंधाक्षत संसार ताप विनाशनाय गंधम चंदनम अक्षत, फिर काम वाण विध्वंसनाय पुष्पम, पुष्प कभी भी काम वर्धक नहीं होते, ये ज्ञातव्य तथ्य है। भले ही श्रृंगार में पुष्पों का प्रयोग जो लोग करते हैं सो करते हैं, लेकिन पुष्प काम वर्धक नहीं होते, इस पर शोध हो चुका है। ऐसा सुनते हैं कि इस पर शोध किया गया है कि पुष्प काम वर्धक नहीं होते। श्रृंगार में उसका प्रयोग होता है, वो एक अलग बात है। फिर नैवेद्य क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, मोहांधकार विनाशनाय दीपम, अष्टकर्म दहनाय धूपम, मोक्ष फल प्राप्त ये फलम। ये आठ द्रव्य जब चढ़ाए जाते हैं तो यही शब्द बोले जाते हैं दोनों स्थानों पर, चौके में भी और वहां भी। गुरु के चरणों में जाकर आप उनके निकट उनकी वसतिका में जब उनकी अर्चना करते हैं तब यही शब्द बोलते हैं। लेकिन तब भी मूलाचार की 583 क्रमांक गाथा में आचार्य भट्टकीर स्वामी ने चौके में की जाने वाली पूजा को लोकानुवृत्ति विनय कहा है। आहार दान के साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए आदान प्रदान वाली बात है वहां पर। आप भक्ति से ही करते हैं, ऐसा नहीं आपके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है कि नियम ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर सौदेबाजी करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पूरे हृदय से करते हैं, भक्ति से करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन साधु आए हैं आपके यहां, आप नहीं गए उनके पास पूजा करने के लिए, आए हुए साधु की आप पूजा कर रहे हैं, और आप पूजा नहीं करेंगे तो वो आहार नहीं लेंगे। ये सारी बातें हैं, उन्होंने उसको लोकानुवृत्ति विनय में स्वीकार किया है। और देखिए कमाल की बात यह है कि उन्होंने केवल साधु के लिए ऐसा नहीं कहा, दिगंबर मुनि मात्र के लिए उन्होंने उस पूजा का वर्णन न करते हुए मूलाचार की वो गाथा हम आपके सामने खोल के ही दिखाते हैं। क्या लिखा है इसमें? अतिथि पूजा। अतिथि पूजा में उन्होंने अतिथि मात्र निर्ग्रंथ श्रवण को न मानते हुए उनको प्रधान अतिथि माना है। लेकिन देखिए और किनको उन्होंने अतिथि माना है, आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती के वचन है। अतिथि पूजा च लोगानुवृत्ति विनयो लोकानुवृत्तिर नाम विनयः। अतिथि पूजा भी लोकानुवृत्ति नामक विनय है। तो अतिथि पूजा किसे कहते हैं? तो बोले मध्यान्न काले आगतस्य साधो हो। मध्यान्न काल में आपके चौके में आए हुए साधु की, जो बहुमानम द्रव्य भाव पूजा इत्यर्थ। बहुमान शब्द का अर्थ क्या होता है? द्रव्य पूजा के साथ भाव पूजा करना अतिथि पूजा है। तो अतिथि पूजा में क्या कह रहे हैं? मध्यान्ह काले आगतस्य साधोः बहुमानम्। मध्यान्ह काल में श्रावक के घर आए हुए साधु की द्रव्य भाव से पूजा करना अतिथि पूजा है, जो कि लोकानुवृत्ति नामक विनय है, लौकिक विनय है। और साथ में ये लिखा है साधोः अन्यस्य वा धार्मिकस्य, और अन्य धार्मिक की भी द्रव्य भाव से पूजा करना लोकानुवृत्ति विनय है, अतिथि पूजा है। इसको सावधानी से समझिएगा, इसमें कोई भी बात अपनी तरफ से न मिलाते हुए जो वहां पंक्ति लिखी हुई है शास्त्र की, उसी पर अपन ध्यान केंद्रित करेंगे, अपनी ओर से कुछ भी नहीं मिलाना है। क्या कह रहे हैं आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, मूलाचार की गाथा क्रमांक 583, उसकी टीका में गाथा में लिखा अतिथि पूजा, यो अतिथि पूजा लिखा है गाथा में, और अतिथि पूजा का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती जो संस्कृत टीकाकार है वो लिख रहे हैं मध्यान्ह काल में दोपहर के समय आगतस्य, आगत का अर्थ होता है आए हुए, आए हुए का अर्थ क्या है, स्वयं आए हुए, आमंत्रितस्य नहीं लिखा। आमंत्रित का अर्थ क्या होता है, बुलाए हुए, और आगतस्य का अर्थ होता है आए हुए। आगत और आमंत्रित दो भिन्न शब्द हैं, तो यहां क्या लिखा, आगत आए हुए। अब क्यों आए हैं, भिक्षावृत्ति के लिए आए हैं। मध्यान्ह काल में साधु क्यों आएंगे श्रावक के यहां, भिक्षा वृत्ति के लिए आएंगे, और कोई कारण तो होगा नहीं। साधु हो, आए हुए साधु भी हो सकते हैं, और अन्यस्य धार्मिकस्य, अन्य धार्मिक भी हो सकते हैं। अन्य धार्मिक में कौन है, अन्य धार्मिक में किनको ग्रहण करें, अपन प्रतिमाधारियों को ग्रहण करें, ब्रह्मचारी भैया ब्रह्मचारिणी दीदी इनको ग्रहण करें, अगर इनको ग्रहण करते हैं तो प्रश्न उठता है कि ये भिक्षावृत्ति करते हैं क्या। जो भिक्षावृत्ति नहीं करते उनको आमंत्रित करके भोजन कराया जाता है। एकदम सरल बात है ना, सबको समझ में आ रही है। जो भिक्षावृत्ति नहीं करते उनको आमंत्रित करके भोजन दिया जाता है, और जो भिक्षावृत्ति करते हैं उनको कैसे भोजन दिया जाता है, उनको दान विधि से भोजन दिया जाता है। दान विधि किसे कहते हैं, नवोपचार विधि को दान विधि कहते हैं। नव पुण्य ही प्रतिपत्ति ही, नव पुण्य अर्थात पवित्र क्रियाएं होती है, उनके माध्यम से उनको आहार दिया जाता है। आहार प्रारंभ होने से पहले, बल्कि भिक्षा देने से पहले ये नौ पवित्र क्रियाएं संपन्न करनी होती है, और इन नौ क्रियाओं के संपन्न होने पर वो आहार ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, भिक्षा ग्रहण करते हैं। उस आहार का, उस भोजन का नाम भिक्षा है। मूलाचार में वो वाला विषय भी अपन ले लेंगे कभी, अभी थोड़ा हमें भी अभ्यास करना होगा। आहार आहार बोलते बोलते युग बीत गए, आदत पड़ गई एक प्रकार से, पर उसको सुधारेंगे, विश्वास है कि सुधार लेंगे। दुनिया की भाषा ना बोलकर मां की भाषा बोलना ही मोक्षमार्गी के लिए हितकर है। तो अन्यस्य धार्मिकस्य में कौन आएंगे? साधु को तो अलग कह दिया उन्होंने। अब साधु की श्रेणी में तो यहां पर मूलाचार ग्रंथ में जो चर्या बताई है उसका पालन करने वाले सब आ जाएंगे। मूलाचार ग्रंथ में कौन सी चर्या बताई है? तो श्रमण और श्रमणी की चर्या बताई है। श्रमण और श्रमणी की चर्या अन्यत्र नहीं है, श्रावकाचारों में नहीं है, मूलाचार में है। तो उस चर्या का, मूलाचार की साधुचर्या का पालन करने वाले श्रमण और श्रमणी दोनों आएंगे। और अन्यस्य धार्मिकस्य में कौन आएंगे? जो भिक्षावृत्ति से आहार लेते हैं, आगम के आदेश पूर्वक भिक्षावृत्ति से आहार लेते हैं, लेकिन जो मूलाचार की पूरी चर्या का पालन नहीं करते, जिन्होंने घर का तो त्याग किया है, जिन्होंने गुरु के पास दीक्षा लेकर वानप्रस्थ का संयम अंगीकार किया है, जो भिक्षुक है, जो तपस्वी है और जो वस्त्रधारी न होते हुए वस्त्र के खंड को धारण करते हैं, भैक्षाशनस तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेल खंडधरः, चेलधरः नहीं, चेल खंडधरः, अखंड वस्त्र को धारण नहीं करते, खंड वस्त्र को धारण करते हैं, अन्यस्य धार्मिकस्य में क्या उनके अतिरिक्त कोई आ सकता है? क्योंकि आगम का आदेश है, भिक्षाशनस, समंत भद्राचार्य कह रहे हैं भिक्षा से भोजन करोगे, ग्यारहवीं प्रतिमा धारण कर रहे हो, भिक्षा से भोजन करोगे, और क्या करोगे? तपस्यन, अब गृहस्थ नहीं रहे, तपस्वी हो गए, अब संघस्थ हो चुके हो, ये अधिकृत संघस्थ की बात है। बाकी अभ्यास के रूप में रहना, प्रतिमा धारण करके संघ में सेवा करना, अध्ययन करना, ये अलग विषय है। लेकिन यहां जिनेंद्र की आज्ञा से संघस्थ होने की बात कही है। तो ऐसे अन्यस्य धार्मिकस्य में एलक, क्षुल्लक और क्षुल्लिका को ग्रहण किया जाएगा। इनका जो बहुमान है चौके में, बहुमान का अर्थ क्या है? द्रव्य भाव पूजा। यह अर्थ हमने कहां से निकाला? तो इसका उत्तर है, हमने नहीं निकाला, यह अर्थ प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में दिया हुआ है कि बहुमान का अर्थ होता है द्रव्य भाव पूजा। तो अब बताइए कि पूज्य में कौन कौन आ रहे हैं? अपन धीरे धीरे समझ रहे हैं ना, एक तो चक्रवर्ती का चक्र भी चक्रवर्ती के द्वारा पूज्य है, वो चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती के समान क्षायिक सम्यक दृष्टि और अणुव्रति भी क्यों न हो, उसके द्वारा पूज्य है। और ये कथन समंत भद्राचार्य, जिनसेन आचार्य, भगवत जिनसेन आचार्य आदि सब अपने अपने वांग्मय में कर रहे हैं। तो इसी पर अपन और आगे विचार करते हुए बढ़ेंगे। सबसे बड़े पूज्य तो अरहंत भगवान है, और अभी अपन ने धवला में पढ़ा था कि पूजा देवों को भी प्राप्त होती है। लौकांतिक देवों का वर्णन जो सर्वार्थ सिद्धि में आया वहां लिखा है, विशेष सुख विरहात ब्रह्मर्षयः इतरेषां देवानां अर्चनीयाः। लौकांतिक देव विषय सुख का विरह होने के कारण अर्थात उनके यहां देवियों का परिवार नहीं होता, तो उस विषय सुख का उनको विरह रहता, वो विषय सुख का सेवन नहीं करते, इसलिए उनको ब्रह्मर्षय देवलोक का ब्रह्मर्षि माना जाता है। और इतरेषां देवानाम अर्चनीयाः, बाकी देवों के लिए वो अर्चनीय होते हैं। लौकांतिक देवों का स्थान देवशास्त्र गुरु की श्रेणी में नहीं है, लेकिन वो अन्य देवों के लिए अर्चनीय होते हैं। तो इससे क्या प्रमाणित हो रहा है कि केवल देवशास्त्र गुरु को अर्चनीय मानना अथवा अर्चनीय है ऐसी धारणा रखना शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों में ही अन्य अनेक अर्चनीयों का वर्णन चल रहा है। अभी हमने आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए, तीन उदाहरण प्रस्तुत किए हमने आपके सामने। कौन से तीन? एक तो चक्रवर्ती का चक्र, दूसरा चौके में साधु के अतिरिक्त एलक क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओं की अर्चना का वर्णन मूलाचार ग्रंथ से हमने आपके सामने रखा, और तीसरा पांचवें स्वर्ग के आलय में रहने वाले जो लौकांतिक देव हैं वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में अन्य देवों के अर्चनीय देव बताए गए हैं। तो वो भी अर्चनीय हुए कि नहीं? अर्चना की परिभाषा क्या है स्मरण में रखना, द्रव्य अर्पित करके अपनी भक्ति प्रकट करने का नाम अर्चना है। तो इस विषय को और भी अपन आगे गतिमान रखेंगे। आज अपन ने जितनी जानकारियां प्राप्त की है उन जानकारियों को स्मृति में धारण करके रखना होगा। जैनम जयतु शासनम। ओम ह्रीम ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रह परमार्थ आप्तागम तपोभृताम। नमस्कार पूर्वकम् अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। कल्पना।